नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू होगी।
चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ।
कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। उधर कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।